दौला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् सिद्धादद्दट्ठमला विशुद्धबुद्धिये लद्धसौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भड़ारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना खंड और उसमें कृति अनुयोग द्वार की यह इस पुस्तक में चर्चा है। इस नौवे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 48 पर मांगे 48। यहां देशावधि के बाद परमावधि की बात चल रही है, तो परमावधि के कितने भेद हैं ऐसा देखने पर हमने देखा था कि अग्निकायिक जीवों के जो अवगाहना के भेद हैं, यानी सूक्ष्म अग्निकायिक जघन्य अवगाहना से लेकर बादर अग्निकायिक उत्कृष्ट अवगाहना तक के एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए जितने भेद है उसको अग्निकायिक जीवों के प्रमाण से गुणा करने पर जो संख्या आती है उतने परमावधि के भेद है, उसी को यहाँ शलाका राशि भी कहा था। प्रश्न ये हुआ था कि सर्वावधि के पहले परमावधि की बात क्यों करी, तो परमावधि के अपेक्षा सर्वावधि में क्या विशेषता है, उसकी महत्ता कैसे वो जान सकते, इसलिए 48 पृष्ठ पर ये प्रश्न पूछा है। शंका पूछते हैं, ये दूसरी शंका, परमावधि की अपेक्षा सर्वावधि की महत्ता कैसे जानी जाती है, यानी उसके द्वारा उसकी महत्ता कैसे, क्योंकि उसका जो उत्कृष्ट का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसकी अपेक्षा सर्वावधि में जो बढ़ोतरी होगी उसको कहेंगे। पहले उसके लिए परमावधि की बात करेंगे। समाधान, इस शंका का उत्तर देते हैं अवस्थित राशि प्रमाण विवरलन के ऊपर। अवस्थित राशि यानी ध्रुव भागहार, यानी ध्रुव भागहार का विरलन करो और उसके ऊपर परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति जो एक एक परमाणु प्राप्त होता है वह सर्वावधि का विषय है। उसका अर्थ क्या है, उत्कृष्ट द्रव्य का जो प्रमाण है उसको ध्रुवहार से भाग देने पर एक संख्या आती है, उसी का अर्थ यह है कि ध्रुवहार का जो प्रमाण है वही परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। ख्याल में आती है न, इसके जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त भेद नहीं है। किसके, सर्वावधि के, क्योंकि सर्वावधि एक प्रकार का है, जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट वो एक ही है, उसमें कोई जघन्य मध्यम ऐसे भेद नहीं है। परमावधि के उत्कृष्ट भाव को, अभी द्रव्य की बात बताई कि सर्वावधि एक परमाणु को जानता है और भाव की अपेक्षा परमावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट भाव होता है। उत्कृष्ट भाव होता है ना, भाव होता है, फिर उत्कृष्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो सर्वोत्कृष्ट है इसलिए बताया, एक ही है। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को, यहाँ पर भी असंख्यात लोक है और उसको असंख्यात गुणा करने पर असंख्यात लोक ही कहेंगे, तो परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोकों से गुणित करने पर, खाली डायरेक्ट आवली का असंख्यात विभाग से गुणा ऐसा नहीं कहा, असंख्यात लोक से, जो ऑलरेडी असंख्यात लोक है उसको और असंख्यात लोक से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। सर्वावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उत्पन्न कराने के लिए परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को आवली के असंख्यातवे भाग से उत्पन्न उसके ही अंतिम अनवस्थित गुणकार से गुणा किया जाता है। हमने देखा था जो पहला गुणकार है उसको आवली से असंख्यातवे भाग से गुणकार किया तो दूसरे विकल्प का गुणकार, दूसरे विकल्प के गुणकार को आवली के असंख्यातवे भाग देंगे उसके गुणा करेंगे, भाग नहीं गुणा करेंगे तो तीसरा विकल्प का गुणकार, ऐसे करते 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 अंतिम जो वो भी असंख्यात लोक होता है क्योंकि गुणकार का प्रमाण अनवस्थित है। तो जो अंतिम भेद है ना परमावधि के अंतिम दो में से जो विकल्प था वहां जो प्रमाण आया था असंख्यात लोक ही प्रमाण था, उसको अवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर जो बड़ा असंख्यात अवली का है असंख्यात लोक होगा वो परमावधि और सर्वावधि में गुणकार का प्रमाण है। ऐसा कोई आचार्य कहते किंतु वह घटित नहीं होता क्योंकि ऐसा मानने पर परिक्रम में कहे हुए अवधि से निबद्ध क्षेत्र नहीं बनता। वह इस प्रकार से नहीं, उन्होंने केवल ऐसा कहा कि आवली के असंख्यात भाग से गुणा करना ऐसा नहीं करना है। हाँ आवली का असंख्यात भाग बराबर है, केवल आवली का असंख्यात भाग दो में गुणकार नहीं, पूर्व गुणकार को वो असंख्यात लोक है, आवली का असंख्यात भाग से गुणा करने पर भी असंख्यात लोक ही होगा, यानी यहाँ डायरेक्ट असंख्यात लोक बता दिया। पेज नंबर 48 नीचे का पैराग्राफ चल रहा है, देखो यहाँ बात क्या हो रही है, सर्वावधि की बात चल रही है। सर्वावधि का द्रव्य कितना है, एक परमाणु है। सर्वावधि का भाव कितना है, तो परमावधि के उत्कृष्ट से असंख्यात गुणा है। अब परमावधि सर्वावधि का क्षेत्र कितना है, तो परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोकों से गुणित करने पर सर्वावधि का क्षेत्र आता है। अब इसके लिए परमावधि के क्षेत्र के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं, यहाँ तक हमने अंतिम लाइन तक पढ़ा, अभी आते 49 पृष्ठ पर, 49 पेज पर, तेज का एक जीव, तेज का एक कहो या अग्नि का एक कहो एक ही बात है, अवगाहना स्थानों से, अवगाहना स्थान यानी उसके अवगाहना के भेद जो हमने कल देखे थे, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त अग्निकायिक जीवों की जघन्य अवगाहना से लेकर बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट अवगाहना तक के सभी भेद देखेंगे हम, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए उसको कहेंगे अवगाहना स्थान। उससे गुणित जिसको हमने शला का राशि भी कहा था पहले, उससे गुणित तेज का एक जीवों की राशि को, ये पूरा गुणित करके जो राशि आएगी उसको शला का कहा था, गच्छ करके जो शला का राशि आई थी उसी को यहाँ गच्छ कह रहे हैं, गच्छ करके एक को आदि लेकर एक एक अधिक संकलन के लाने पर, जैसे प्रथम स्थान में एक, द्वितीय स्थान में एक 1+2 यानी 3, तृतीय स्थान में 1+2+3 6, चतुर्थ स्थान में 1+2+3+4=10 इत्यादि लाने पर क्या कहना चाहते हैं, पहले ये गच्छ करना, जैसे अगर हमारा 4 गच्छ होगा तो एक बार संकलन करनी है, 1 से लेकर वहाँ तक के सभी संख्याओं को ऐड करते जाना, उसको संकलन धन कहते हैं। फिर से पढ़ते ये जो हमने देखा था ना शलाका राशि जो पहले निकाली थी उसको गच्छ करके एक को आदि लेकर एक एक अधिक संकलन के लाने पर, गच्छने वो संख्या नक्की करके, वो हमने संख्या की ना, वो उसको ही शला का कहा, उसी को गच्छ कह रहे तो उसको एक एक अधिक संकलन के लाने पर तेज का एक राशि के वर्ग को लांग कर उससे ऊपरी वर्ग के नीचे यह राशि उत्पन्न होती है। जैसे चार का वर्ग, अब यहाँ चार राशि होगी मान लेते, चार राशि का संकलन धन कितना होता है? दस है। वो दस ये राशि क्या है? चार का वर्ग, जो चार और चार के वर्ग के बीच में आती है। अब देखो पांच की संकलन कितना होता है? पांच का संकलन धन, हाँ उसमें दस में पंद्रह हो जाएंगे, यानी वो पांच और पच्चीस के बीच में है। किसी भी राशि का संकलन धन उस राशि और उसके वर्ग के बीच में होगा। तो तेज का एक राशि के वर्ग को लांग कर उसके ऊपरी वर्ग के नीचे यह राशि उत्पन्न होती है। वर्ग को इसलिए लांगा क्योंकि जिसका संकलन धन निकालना है वह राशि अवगाहना से गुणित तेज का एक जीवों की राशि थी, इसलिए वर्ग को लांग कर कहा, और उसके ऊपर के वर्ग के नीचे इस शला का संकलन राशि का विरलन करके, फिर से इसका अर्थ समझ लो। संकलन राशि का अर्थ होता है जैसे हमारे पास तीन राशि है तो एक से लेकर तीन तक के सभी राशियों का टोटल करना, ऐड करना, एक अधिक दो अधिक तीन। जैसे दस का संकलन धन करना है तो हाँ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन, उसको संकलन धन कहते हैं। तो जो छला का राशि हमारे पास थी जिसको यहाँ गच्छ कहा था, उसका संकलन धन निकालना वो कितना होता है? तो तेज का एक राशि के वर्ग के ऊपर की और उसके वर्ग के नीचे की है राशि है। अब उस राशि को क्या करना? विरलन करना। आवली के असंख्यात वे भाग को प्रत्येक रूप के प्रति देकर परस्पर गुणित करके उस देशावधि के देशा करना, उससे देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र घनलोक को गुणित करने पर परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, हम देख जरा देखते हैं। नहीं, घनलोक उसका उत्कृष्ट क्षेत्र है। अच्छा। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र ही घनलोक है। देखो देखो हमने क्या देखा था, ये देशावधि का उत्कृष्ट कितना है? एक लोक। हाँ। परमावधि का पहला जो भेद है P1 कहो, तो वो कितना है? तो हमने वो अवस्थित और अनवस्थित की बात देखी थी, तो डायरेक्ट इसको आवली के असंख्यात भाग से गुणा करो तो ये उसका लोक इंटू आवली का असंख्यात भाग, ये P1 और देशावधि के बीच वाला गुणकार होगा। उसके आगे वाला गुणकार P2 का गुणकार कितना है? ये लोक गुणा आवली का असंख्यात भाग इंटू आवली का असंख्यात भाग, यानी लोक को दो बार आवली के असंख्यात भाग से गुणा करना पड़ेगा। P3 का गुणकार कितना होगा? लोक को परमावधि 1 2 3 मान लेते, परमावधि के तीन ही भेद होते तो यहाँ तीन बार हमने किया ना, यानी पूरो गुणकार को ये करना है। तो तीसरे का गुणकार हमको डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले में एक बार आवली का संख्या था भाग, यहाँ दो बार आवली का संख्या, इसको परस्पर गुणा करेंगे तो क्या होगा? लोक को इतने बार आवली का संख्या तो भाग हो जाता है, तीन बार हो जाता है। वही यहाँ कह रहे हैं जो शलाका का संकलन धन करना, यहाँ शलाका अगर तीन होती है, उत्कृष्ट भेद अगर तीन हो गए, लोक को केवल एक बार अवली के असंख्यात भाग का भाग गुणा किया तो परमावधि का पहला गुणकार आया। दूसरे गुणकार के लिए क्या करना? ये जो पहला गुणकार है उसी को अवली के असंख्यात भाग से और गुणा करो, वो इसके दो बीच का, ये इनके दो के बीच का ये गुणकार है। आगे वाले गुणकार वो आवली के असंख्यात भाग से गुणित गुणों का गुणकारों का प्रमाण ही उतना उतना होता चला जाता है। जो जो संकल जो जहाँ का जो हमको निकालना है, अब यहाँ क्या किया, फिर से पढ़ते चौथी लाइन, संकलन राशि का विरलन करके आवली के असंख्यात भाग को प्रत्येक रूप के प्रति देकर, जिसको प्रत्येक रूप के प्रति देना है वो डिवाइडेड बाय शलाका का संकलन करना पड़ेगा, परस्पर गुणित करके उससे देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र घनलोक को गुणित करने पर परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है, इसके अध्वान की खोज करते हैं। यानी वो कितना आता है उसकी बात करेंगे। देय राशि के, देय राशि आवली का असंख्यात्वा भाग, क्योंकि हरेक के ऊपर हमने प्रत्येक रूप के ऊपर आवली का असंख्यात्वा भाग दिया था और उसको गुणा कर किया था, फिर से देखो ना यही बात है ना। यदि हम तीन ही भेद करते तो शलाका राशि हमारी तीन होती, तो तीन का विरलन किया, एक 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 तीन जगह स्थापित किया और हरेक के ऊपर आवली का असंख्यात्वा भाग दिया और उसका परस्पर गुणा किया और उससे लोक को गुणा किया, बात एक ही आई ना। यानी जितने परमावधि के भेद है, यहाँ तो वो विरलन करना कहा, केवल शलाका नहीं लिया, शलाके के संकलन राशि लिया, शलाका की संकलन राशि तो और बड़ी होगी, शलाका की संकलन राशि तीन की संकलन राशि छह हो जाती है, तो छह बार करना पड़ेगा वहां पर। केवल शलाका राशि को विरलन नहीं करना, उसके संकलन राशि को विकलन विरलन करना है। यानी तीसरे भेद के लिए छह बार आवली का असंख्यात्वा भाग परस्पर गुणा करना पड़ेगा। अभी वही बता रहे हैं, देखो इसके अध्वान की खोज करते हैं। देखो इसको यहाँ मैं जीव कांड में से पढ़ना चाहती हूँ, पेज नंबर 537 निकालना, 537। किसी भी भेद का अगर निकालना है गुणकार तो कैसा निकालना, उसकी बात यहाँ पर है। हमने तो केवल उसके उतने से गुणा करना ऐसा लिखा था, परंतु यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा बात हो रही है। हाँ, 417 की टीका है ये, मुझे यहाँ लिखना है। पेज नंबर अपना है 537 हिंदी और गाथा है 417। वहां से मैं पढ़ती हूँ। परमावधि ज्ञान के विवक्षित क्षेत्र के भेद में व विवक्षित काल के भेद में जो उस भेद का संकलित धन हो उतने आवली के असंख्यातवे भाग मानकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण होता है वह विवक्षित भेद में गुणकार जानना। इस गुणकार से देशावधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र को गुणा करने पर परमावधि के विवक्षित भेद में क्षेत्र का प्रमाण होता है और देशावधि के उत्कृष्ट काल को गुणा करने पर विवक्षित भेद में काल का प्रमाण होता है। ये ज्यादा स्पष्ट है यहाँ पर। अभी क्या कहना चाहते हैं? परमावधि का पहला भेद है तो पहले के लिए लोक को एक बार आवली के असंख्यात विभाग से गुणा किया, परंतु दूसरा जो भेद है ना तो केवल दो बार आवली के असंख्यात विभाग से नहीं गुणा किया। दो का संकलन धन कितना होता है? 1+2 तीन, तो तीन बार आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करना पड़ेगा। दूसरे और तीसरे में कितना है गुणकार, या डायरेक्ट तीसरे का गुणकार कितना है? क्योंकि हमको लोक को गुणा करना है, लोक को उससे गुणा करना है, तो 1+2+3 छः हो जाते हैं। तो लोक को छः बार आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करेंगे तो आगे का गुणकार, नहीं तो केवल वो केवल आवली के असंख्यात विभाग गुणा नहीं हो जाता है। पहले गुणकार इंटू उतने उसके भी ले लेना, यानी दूसरे का गुणकार कितना होता है? दो बार आवली का संख्या, तीसरे के लिए 2+1 तीन बार आवली का संख्या का भाग, इतने हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं, तीसरे के लिए 6 बार आवली का संख्या का भाग होता है, 3×2 ऐसा करना। तो संकलन धन किसे कहते हैं उसकी बात यहाँ पर फिर देखते हम, क्योंकि हम भूल गए ना संकलित धन या संकलन धन किसको कहना। जितने वहां भेद विवक्षित हो, चौथा है तो चौथे तक, पांचवा है तो पांचवे तक, वहां तक एक से लेकर एक एक अधिक अंक मानकर उन सब अंकों को जोड़ने पर जो प्रमाण होता है जिसको हम कहते हैं टोटल, उसे संकलित धन जानना। जैसे प्रथम भेद में एक ही अंक है, इसके पहले कोई अंक नहीं, इसलिए प्रथम भेद में संकलित धन एक है, यानी एक का संकलन धन एक है। संकलित धन कहो या संकलन धन कहो एक ही बात है। दूसरे भेद में एक और जोड़ देने पर संकलित धन तीन हुआ, यानी 1+2 तीन हो जाता है। पेज नंबर है 537 में, जीवकांड में से पढ़कर आपको संकलित धन क्या है उसको बता रही हूँ। तीसरे भेद में 1, 2, 3 अंक जोड़ने पर संकलित धन 6 हुआ, तो उसको लोक को 6 बार आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करने पर परमावधि का तीसरा भेद आएगा। चौथे भेद में 4 और जोड़ना, और जोड़ना का अर्थ होता है वो 6 थे उसमें और 4 जोड़े थे, 10 हो जाएंगे, संकलित धन 10 हुआ। पांचवे भेद में 5 का अंक और जोड़ने पर संकलित धन 15 हुआ। ऐसे सब भेदों में संकलित धन जानना, जितने नंबर का होगा उत वहां तक की सभी की टोटल करना है। सो इस एक बार संकलित धन लाने का करण सूत्र, ये हमने पहले ज्ञान मार्गणा में देखे थे, पर्याय समास श्रुत ज्ञान का कथन करते समय कहा है उससे संकलित धन का प्रमाण लाना। इस संकलित धन को गच्छ धन व पद धन इस नाम से भी कहते हैं, जो जिस नंबर का वो भेद है उसको गच्छ कहते हैं। यहाँ कितने गच्छ है हमारे, तो शलाका राशि प्रमाण, तो अंतिम भेद को क्या कहेंगे? गच्छ। उसका गच्छ कौन सा? जो शलाका राशि का प्रमाण है वो गच्छ। तो एक से लेकर उस संख्या तक की सभी संख्याओं की टोटल करना। अभी इसके लिए करण सूत्र हमने वहां देखा था, जैसे हमको 5 राशि है और उसका संकलन धन एक बार संकलन धन निकालना है, तो डायरेक्ट निकालना है। उसके लिए आसान तरीका क्या है? उसके नेक्स्ट वाली संख्या से गुणा करो, 5×6 / 1×2, ये उस विशिष्ट संख्या का संकलन धन निकलता है, यानी 5 गुना 6 30 हुए डिवाइडेड बाय 1 × 20 डिवाइडेड बाय 2 15 आते हैं। अभी हमने करके देखा, जैसे आपको पूछा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की टोटल करो, आधे मिनट में हमको उत्तर दो, तो क्या करेंगे, 100 गुना 101 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से भाग दिया तो 50 आए यहाँ पर, 101 इंटू 50, तो डायरेक्ट हमको उसका उत्तर मिल जाता है। ऐसे इतने जहाँ ये असंख्यातों में संख्या है उसको असंख्यात प्लस 1 से गुणा करो और 2 से भाग दो, ये हो गया उसका संकलन धन। तो ये हमने पहले सीखा था विस्तार से, उसके अलग अलग मेथड्स भी निकाले थे। अब विवक्षित परमावधि ज्ञान का 5वां भेद मान लेते हैं, उसका संकलित धन 15। अभी हमने देखा कैसे निकालना, सो 15 जगह आवली का असंख्यातवा भाग मानकर परस्पर गुणा करने से जो प्रमाण होगा वही 5वें भेद में गुणकार जानना। इस गुणकार से उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र कौन, लोकाकाश प्रमाण, उसको गुणा करने पर जो प्रमाण होता है उतना परमावधि के 5वें भेद के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण जानना। जैसे काल का प्रमाण निकालना है तो ये जो हमने संकलित राशि को गुणा किया है उतनी बार आवली के संग, वो काल को गुणा करना, और उस किसको, उसके गुणा करना उत्कृष्ट देशावधि का जो काल है, कितना एक समय कम पल्य, उसको इतना गुणित करेंगे तो काल का प्रमाण आएगा। इस तरह सब भेदों में क्षेत्र और काल का प्रमाण जानना। उसमें और भी बहुत सारी विशेषता है, उसको भी छोड़ देते हैं हम, अगर उसका प्रयोजन पड़ा तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। अभी हम धवला में पढ़ते हैं, पेज नंबर 49। हाँ, इसके अध्वान की खोज करते ऊपर से 4-3-7 लाइन में, देय राशि के अर्ध छेदों से युक्त। अभी हमने आवली का असंख्यातवा भाग हर एक एक के ऊपर रखा था, जैसे हमने देखा ना हमारा जो गच्छ अगर 3 होता, 3 गच्छ होता तो उसका संकलन धन 6 है, तो हमने 6 को विरलन किया, यानी एक 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 6 बार लिखा, और हर एक के ऊपर देय राशि क्या दिया, आवली का असंख्यातवा भाग, इसको देय राशि कहते हैं। तो देय राशि से अर्धच्छेदों से युक्त विरलित राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशाला का होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, अभी जो हमें मालूम है वर्गशाला का वगैरह, ऐसी राशियां यहाँ लिखनी पड़ेगी। देखो हम अभी हमने जो क्या देखा था, 6 बार लिखा नीचे और ऊपर आवली का असंख्यातवा भाग भी हर एक के ऊपर लिखा। अभी हम कोई हमें मालूम है ऐसी फिगर लेते हैं, तो नीचे हम विरलन करेंगे 4 का, 4 या बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है 6 का ही हम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ऊपर हमने 4 राशि दी, हमको तो उनका सिद्धांत देखना है क्या है। अब क्या कहते हैं, विरलत देय राशि के अर्धच्छेद, देय राशि के अर्धच्छेद होते 2, उससे युक्त विरलत राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशाला का होते हैं। अब ये 6 लेके चलेगा नहीं है, मान लेते ना हम 16 लेते ना, समझने के लिए क्या जाता है, यदि 16 लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको जिसके अर्धच्छेद मालूम है ऐसी संख्या 8 ले लो, चलो 256 होते ना, 256 की वर्ग अर्धच्छेद कितने हो गए, 8 हो गए, बड़ी संख्या लेने जाते तो उसके अर्धच्छेद मालूम है, पर संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि हमको कैलकुलेट करने को आना चाहिए। मैं जरा करके देखती हूँ। यदि हम विरलन राशि अगर हम उसको 4 कहते हैं, और ऊपर देय राशि 2 लिखी हमने, तो उसकी संख्या कितनी आएगी, 2 × 2 × 2 × 2 16 आती है। तो इसके अर्धच्छेद, देय राशि के अर्धच्छेद 1 और विरलन राशि के अर्धच्छेद 2, 4 के अर्धच्छेद 2, ये मिला 3, ये तो इनकी संख्या कितनी आ गई, 4 16 256, वर्गशाला का जिसकी 256 है, तो ऐसा आता है। देय राशि के अर्धच्छेदों से युक्त विरलित राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशाला का होते हैं। देय राशि के अर्धच्छेद से युक्त विरलित राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशाला का होते हैं। वर्गशाला का 256 कैसे हो गए, ये बैठ नहीं रहा मेरे को, यानी उसकी संदृष्टि मैं नहीं बना पा रही हूँ, यहीं से पढ़ते थे को। फिर से पढ़ती हूँ। देय राशि के यानी अवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेदों से युक्त विरलित राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशाला का होते। अभी वर्गशाला का किसको कहना मालूम है आपको, द्विरूप वर्गधारा जो है कौन सी है, 4, पहला वर्ग स्थान है 16, दूसरा वर्ग स्थान 256, तीसरा वर्ग स्थान, तो जिस स्थान पर है वो, तो जैसे 16 की वर्गशाला का 2 है, 256 की 3 है, 15 की 4 है, उसको वर्गशाला का कहते हैं। तो ये कहते हैं जो हमने ऊपर देय राशि दी है उसके अर्धच्छेदों से युक्त यानी प्लस विरलित राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशाला का होते हैं, यानी उन दोनों के अर्धच्छेदों की अगर हम टोटल करेंगे तो हमें वर्गशाला का मिल जाएगी, और उस स्थान का हम संख्या निकाल सकते हैं उस राशि की। विरलन राशि के अर्धच्छेद यहाँ तेजकायिक जीवों के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दूने हैं, क्योंकि खाली तेजकायिक जीवों के अर्धच्छेद नहीं निकालना है। हमारी विरलन राशि कितनी है, वो तो शलाका राशि दी थी, उसके उसका संकलन धन है, बहुत बड़ी है, और उसके अर्धच्छेद कितने हो गए, तेजकायिक जीवों के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दूने हैं, हमने वो देखा था। अभी ये तो जो गच्छ की थी राशि, अभी ऊपर जो तीसरे लाइन में देखना, ये संकलन धन कितना आता है, तो तेज का एक राशि के वर्ग को लांग कर उससे ऊपरी वर्ग के नीचे यह राशि होती है। यहां तो इतना ही कहना है कि तेज का एक राशि हम मान लेते हैं ना 16 है, या 256 मान लो, हमें मालूम है वो संख्या हम लेते 16 है, 256 और 15 है। अब मान लेते कि तेजकाई का वर्ग है 256 और उसका ऊपरी वर्ग है 15, तो इनके बीच वाली कोई संख्या होनी चाहिए। यहाँ तो यही कहते हैं, तो अभी ये जो हमने संकलन धन निकाला था, वो संकलन धन कितना है, तेजकाई के राशि के वर्ग के ऊपरी है परंतु उसके वर्ग के नीचे है। हमारी अभी हम जो उदाहरण ले रहे हैं 256 और 15 के बीच वाली कोई संख्या होगी, इनके अर्धच्छेद कितने हो गए ये कह रहे हैं अभी। हाँ वर्ग 256, उसका वर्ग 58। हाँ यानी वो तो होगी। अभी मैं अभी ये कहना चाहती अभी वर्ग की बात बता रहे हैं ना, यानी उसके अर्धच्छेदों की बात। 16 के अर्धच्छेद कितने हैं? 4 है। 256 के अर्धच्छेद है 8, और 58 के अर्धच्छेद हो गए 16। अब हमने जो नीचे फिर पढ़ विरलन राशि के अर्धच्छेद, यहाँ तेजकायिक जीवों के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दूने हैं। कुछ अधिक दूने हैं ने विरल, देखो अभी यहाँ देखो 16 के अर्धच्छेद 4, उसके वर्ग के अर्धच्छेद 8, और कुछ अधिक हो जाएंगे, यानी 8 से कुछ अधिक और 16 से कुछ कम। हमें इतना ही देखना है ये ऐसा क्यों उन्हें स्टेटमेंट किया, क्योंकि ऊपर राशि कितनी होती, तेजकायिक राशि के वर्ग के ऊपर की राशि है, तो तेजकायिक के अर्धशेलाका के दूने तेजकायिक के वर्ग के अर्धच्छेद हो जाएंगे और उससे थोड़ा अधिक है, ये इतना ही यहाँ बताना चाहते हैं। अब पूछते हैं शंकाकार, क्या है ये अर्धच्छेद वर्गशलाका वगैरह, केवल एक बार सुनने से वो क्लैरिटी नहीं होती उससे, और हम उदाहरण के तौर पर छोटी संख्या लेकर समझाना चाहते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। अभी शंका, किनसे यहाँ अधिकता है, अर्थात उस अधिकता का प्रमाण क्या है, उसका समाधान अवगहना स्थान के वर्ग के अर्धच्छेद और दीयमान राशि की वर्गशलाकाओं से यहाँ अधिकता है। अभी वो अर्ग अवगहना स्थान जो हमने देखे थे उसको तेजस्कायिक जीवों की राशि को गुणा किया था, इनका प्रक्षेप करने पर, प्रक्षेप करने ने उनके एडिशन करना, टोटल करना, आदि के वर्ग से लेकर परमावधि के चढ़ित अध्वान होता है। तेजकायिक राशि के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दूने मात्र इस चढ़ित अध्वान को, यानी वो आगे कितने गए हैं उसको चढ़ित अध्वान कहा, अध्वान यानी उसकी जो लंबाई कहो या उसके प्रमाण जो, तेजकायिक राशि की वर्गशलाकाओं से खंडित कर अर्धरूपकम इससे तेजकायिक राशि की वर्गशलाकाओं को गुणित करने पर तेजकायिक राशि से ऊपर चढ़ित अध्वान होता है। यह परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र तेजकायिक जीवों की काय स्थिति से स्तोक है। काय स्थिति समझते कितना है? हाँ, कोई जीव तेजस्कायिक में जन्म लिया तो कितने काल तक रहेगा, तो कितने असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रह सकता है। वो असंख्यात लोक प्रमाण का जो काल है उससे ये जो ये परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कम है, इतना ही समझना है। क्योंकि पेज नंबर 50 पर तेजकायिक राशि के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दुगुने प्रमाण उसकी वर्गशलाकाएं हैं, वर्गशलाका समझते, तेजस्कायिक राशि जो द्विरूप वर्ग धारा में जिस स्थान पर हो गए उसका नाम है उसके वर्गशलाका। जैसे हमने पनट्ठी बात करते, पनट्ठी की वर्गशलाका है 4 और पनट्ठी के अर्धच्छेद है 16, इस तरह से कंपेयर करना, किसी राशि के अर्धच्छेद उसके वर्गशलाका से ज्यादा होते। फिर से, तेजस्कायिक राशि के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दुगुने प्रमाण उसकी वर्गशलाकाएं हैं। उसकी अनेक काय स्थिति की, तेज कायिकों की काय स्थिति बहुत है, क्योंकि तेज कायिक राशि से ऊपर असंख्यात लोकमात्र वर्गस्थान जाकर उसकी वर्गशलाकाएं उत्पन्न होती है। यानी तेजस कायिक राशि को हम द्विरूप वर्ग धारा में रखेंगे, उसका वर्ग 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 का वर्ग वर्ग का वर्ग कितने बार करना, तो असंख्यात लोकमात्र ऊपर चले जाना है, तो उसकी वर्गशलाकाएं होगी। यानी उसकी वर्गशलाका ही कितनी होगी तेजस कायिक की जो काय स्थिति की है। और तेजस कायिकों की काय स्थिति से नीचे असंख्यात लोकमात्र वर्ग स्थानों को छोड़कर स्थित इस परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को आवली के असंख्यात विभाग से गुणित परमावधि के अंतिम अनवस्थित गुणकार से गुणा करने पर अवधि निबद्ध क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि परमावधि क्षेत्र के असंख्यात विभाग रूप इस गुणकार से परमावधि के क्षेत्र को गुणित करने पर उसका ऊपरी वर्ग भी नहीं उत्पन्न होता। इतना ही कहना चाहते हैं, परमावधि का जो उत्कृष्ट जो गुणकार था, अंतिम गुणकार, उसको केवल अवली के असंख्यात विभाग से नहीं गुणा करना है, यही कहना चाहते हैं। तो कितना गुणकार है ये अभी मूल इस पर आए कि गुणकार कितना है, ऐसा पूछने पर कहते हैं परमावधि के क्षेत्र का तेज कायिकों की काय स्थिति और अवधि निबिद्ध क्षेत्र के परस्पर गुणकार के वर्ग की अर्धच्छेद शलाकाओं के ऊपर असंख्यात लोकमात्र वर्गस्थान जाकर स्थित वर्गस्थान या असंख्यात लोक प्रमाण वर्ग अनिबद्ध अवधि निबद्ध क्षेत्र में भाग देने पर जो लब्ध हो उतना मात्र गुणकार होता है, अन्य नहीं, क्योंकि उक्त दोष का प्रसंग आता है। यानी असंख्यात लोक वाला ही गुणकार होगा, वो तो छोटा गुणकार नहीं है, बस इतनी बात कह रहे। वो तो बता ही दिया था ना वहां पर, उसमें सर्वावधि में क्या बताया यहाँ पर, यहाँ कुछ खास बात नहीं लिखी है। यानी असंख्यात लोग का गुणकार है, बस इतनी बात बताई मैं, हाँ असंख्यात लोग गुणकार है उसका, बस यही उन्होंने प्रूव किया। वो उसमें से बहुत सारी बातें तो अपने पल्ले भी नहीं पड़ रही है, और हमारे पास वो गणित वाली बातें अभी सामने नहीं है कहो, या उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि उसके लिए वो अर्धच्छेद है, वर्गशलाका है, वर्गस्थान है, उसका विस्तार से वहाँ वर्णन करना पड़ेगा। इतना ही लेना है हमको, वो केवल आवली के असंख्यात विभाग से गुणित वाला अनवस्थित गुणकार नहीं है, असंख्यात लोक वाला गुणकार है। अब यहाँ 50 पेज पर नीचे से पांचवी लाइन पढ़ेंगे, परमावधि के काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट काल होता है। ये समझ में है ना, ये दोनों को यथा योग्य असंख्यात लोगों से गुणा करने पर क्षेत्र और काल आता है, वो देशावधि के उत्कृष्ट गुणा करना। अब शंका, यह एक ही लोक है परमावधि और सर्वावधि, असंख्यात लोकों को जानते यह कैसे घटित होता है? कल हमने इसकी चर्चा की थी। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यद्यपि सब पुद्गल राशि असंख्यात लोकों को भरकर स्थित हो तो भी वे जान सकते हैं। पुद्गल राशि यदि असंख्यात लोकों में इतने फैली होती तो भी वो जानते हैं। इस प्रकार उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया है। फिर शंका, जिनत्व के अविनाभाव रखने वाले परमावधि और सर्वावधि को जिन का विशेषण किस लिए किया जाता है? समाधान, इस प्रकार शंकाकार का कहना सत्य है, किंतु यहाँ सर्वावधि और परमावधि विशेषण है और जिन विशेष्य है, क्योंकि वे अवधि ज्ञान के अनेक प्रकारों के आधार है। अतएव उक्त विशेषण विशेष्य भाव में कोई दोष नहीं है, यह सिद्ध है। इसलिए सर्वावधि रूप जो जिन हैं, उनके लिए नमस्कार हो। अब पांचवा सूत्र, नमो अनंतो ही जिनानम, अनंतावधि जिनों को नमस्कार हो। अनंत इस प्रकार कहने पर उत्कृष्ट अनंत का ग्रहण है, क्योंकि यहां द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है। वह उत्कृष्ट अनंत अवधि जिसके होती है वह अनंतावधि है। शंका, अवधि यह नाम की अपेक्षा वस्तु निमित्तक संज्ञा है और यहाँ उत्कृष्ट अनंत से बाह्य कुछ भी वस्तु नहीं है, अतः उत्कृष्ट अनंत को अवधिपना उचित नहीं है। क्या कहते हैं? अवधि ने मर्यादा, यहाँ तक, तो तक कहने के लिए और कोई वस्तु ही होती तो यहाँ तक कहते, पर कहते अभी इससे बाहर कोई वस्तु ही नहीं है, तो ये तक विशेषण क्यों लगाया? अवधि ऐसा क्यों कहा उसको? नहीं, क्योंकि अवधि के समान जो है वह अवधि है। इस प्रकार उपचार से उत्कृष्ट अनंत को, वो उ का अ करो, उत्कृष्ट अनंत लिखा, उनंत हुआ, अवधि मानने में कोई विरोध नहीं है। फिर शंका पूछते हैं, अवधि यह उत्कृष्ट अनंत से क्या पृथकभूत है, अथवा उत्कृष्ट अनंत ही अवधि है? हमेशा की तरह दो प्रश्न पूछ रहे और उसके उत्तर फिर दोनों पक्षों के स्वयं ही देके घटित नहीं होता, ऐसा कहेंगे, है ना? इनमें प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट अनंत को छोड़कर द्रव्य, पेज नंबर आगे का 52, उत्कृष्ट अनंत को छोड़कर द्रव्य उनकी पर्याय नहीं पाए जाते, और उत्कृष्ट अनंत अवधि ही हो सो भी नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट अनंत के दोनों ही पार्श्व भागों में अन्य का अभाव होने से उसे अवधि मानने में विरोध है। अर्थात उत्कृष्ट अनंत से कोई वस्तु बाहर नहीं है, इसलिए उसे अवधि नहीं मानना चाहिए। यानी उससे बाहर कोई वस्तु ही नहीं, तो इसको लिमिट क्यों कह रहे, ये कह रहे। समाधान, शंकाकार ने जिन दो पक्षों में दोष दिखाए है उनमें से प्रथम पक्ष तो है ही नहीं, क्योंकि वैसा हम स्वीकार ही नहीं करते। कौन सा प्रकार था कि अवधि उत्कृष्ट अनंत से पृथक है क्या? नहीं है, तो कहते वो तो है ही नहीं है। द्वितीय पक्ष में कहा गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ अभिविधि को ग्रहण किया है। दूसरी बात यह है कि एक वस्तु में द्वित्व का विरोध भी नहीं है, क्योंकि अनेकांत का आश्रय कर एक में द्वित्व का अविरोध है, अथवा यहाँ अवय विनाशों का अवय विनाशों का वाचक अंत शब्द ग्रहण करना चाहिए। ये अवय विनाश क्या होता है? अवधि का अर्थ मर्यादा है, वह उत्कृष्ट अनंत से पृथकभूत है। अंत और अवधि जिसके नहीं है वह अनंतावधि है। अभेद होने से जीव की भी यह संज्ञा है, अनंत अवधि रूप जो जिन है वे अनंतावधि जिन हैं, उनको नमस्कार हो। ये अवयव विनाश क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया। अनंत ऐसा लिया उसको जिसको अंत भी नहीं और अवधि नहीं, उसको अनंत अवधि कहा। फिर शंका, अनंतावधि जिन, वो का निकाल देना वहां। अनंतावधि जिन केवल ज्ञानी होते हैं इसलिए वे सब जिनों से महान होते हैं, उनको पहले ही नमस्कार क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के महात्म्य का ज्ञान कराने रूप गुण की अपेक्षा केवल ज्ञान से सर्वावधि महान है। यानी वो सर्वावधि के द्वारा उसकी महानता बताई है, इसके तो लिमिट है, उसके तो बिल्कुल अंत भी नहीं और अवधि भी नहीं है। इस तरह से महान है ना, उसकी विशेषता है या उसकी मुख्यता है, यानी उसके द्वारा हम केवल ज्ञानी की और अनंतता सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए हाँ, ये भी पहले भी आया था ना, पहले देशावधि को क्यों कहा बाद में क्योंकि परमावधि का मैग्नीट्यूड समझाने के लिए देशावधि की मैग्नीट्यूड बताते हैं, महान यानी मैग्नीट्यूड उसकी। फिर नीचे की शंका देखो, मिथ्यात्व से चूंकि सम्यक्त्व का महात्म्य जाना जाता है, अतः सम्यक्त्व की भक्ति की अपेक्षा मिथ्यात्व को नमस्कार क्यों नहीं किया जाता? इसको कहते हैं तर्क ही निकालने हैं ना, इसलिए यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मतिश्रुत और अवधि ज्ञानों से केवल ज्ञान का महात्म्य जाना जाता है, उस प्रकार मिथ्यात्व से सम्यक्त्व का महात्म्य नहीं जाना जाता, क्योंकि वो तो विपरीत अलग अलग है ना। ये मति शुद्ध ज्ञान तो हम कहेंगे वो तो थोड़े है और केवल ज्ञान उसकी अपेक्षा कितने हैं ज्यादा। दूसरे, जो जिसका भक्त अथवा मित्र होता है वह उसके विरोधियों की भक्ति नहीं करता, यानी सम्यक्त की भक्ति कहने से वो तो मिथ्या तो विपरीत भाव हो गया, उसकी भक्ति नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा करने में विरोध है। अथवा पश्चातानुपूर्वी अर्थात विपरीत क्रम दिखलाने के लिए देशावधि जिनादिकों को पूर्व में नमस्कार किया है। क्या कहना चाहते हैं? एक होती है पूर्वानुपूर्वी, एक होता है पश्चातानुपूर्वी। जैसे हम कहते ना कि महान से लेकर हीन तक, या हम के पूर्वानुपूर्वी किसको कहेंगे, वृषभ से लेकर महावीर पर्यंत, ये पूर्वानुपूर्वी। उल्टे क्रम से कहेंगे हम तो पश्चातानुपूर्वी। वहां तो ये सभी 24 जीवन समान है, परंतु यहाँ महानता और थोड़ी हीनता इस अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो केवल ज्ञान से लेकर हम देशावधि तक आते, और देशावधि से अगर हम नमस्कार करेंगे तो वो पश्चातानुपूर्वी हो गए। ये कथन पद्धति होती है अलग अलग, एक होता है पूर्वानुपूर्वी, एक होता है पश्चातानुपूर्वी, एक होता है यत्र तत्रानुपूर्वी। कहीं से भी किसी को भी बीच में नमस्कार करेंगे उसको कहेंगे यत्र तत्र। अब श्रुत और मनपर्य ज्ञान तथा तप आदि चूंकि मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, अतः मति ज्ञान में उत्पन्न हुई श्रद्धा से युक्त गौतम भट्टारक उत्तर सूत्रों के द्वारा मति ज्ञानियों को नमस्कार करते हैं। अब मति ज्ञान में जो कुछ रुद्धि के धारक है उनकी बात यहां निकालेंगे। कहते नमो कोठ बुद्धिणम, कोष्ठ बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। अब ये तो जो है ना कोष्ठ बुद्धि वगैरह वो तो मतिशुत ज्ञानी है, केवल ज्ञानी के तो केवल ज्ञान रुद्धि है। देखो कोष्ठ किसको कहना, शाली व्रीही जौ और गेहूं आदि के आधारभूत कोथली पल्ली आदि का नाम कोष्ठ है। कोष्ठ हम कहते कोठे उसके, ऐसा कोष्ठ। श्रुत ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य व पर्यायों को धारण करने रूप गुण से कोष्ठ के समान होने से उस बुद्धि को भी कोष्ठ कहा जाता है। कोष्ठ रूप जो बुद्धि व कोष्ठ बुद्धि है, इसके अर्थ को धारण करने का काल जघन्य से संख्यात वर्ष और उत्कृष्ट से असंख्यात वर्ष है। कोष्ठ बुद्धि असंख्यात वर्ष, क्योंकि असंख्यात और संख्यात काल तक धारणा रहती है ऐसा सूत्र पाया जाता है। ये धारणा इन्हें संस्कार के अर्थ में आया हो। नीचे वो कुछ त्रिलोक पंडित ने क्या उन्होंने फुटनोट देखा है लिखा है वो हम देखते हैं जरा वहां से। वो एक आंकड़ा किसके लिए लिखा है ऊपर, आंकड़ा कहाँ लिखा है? कोट्ठ बुद्धि के लिए लिखा है, पढ़ेंगे नीचे फुटनोट पेज नंबर 53 की। उपकरिष धारणाए जुत्तो पुरुषो गुरुव ऐसेणम नाना विह ग्रंथेशु विथारे लिंग सद्द बीजाने गयूण नियम दिए मिस्सेन विना धरे भी मदि कोठे। जो कोई तस्स बुद्धि निदिठा कोठ बुद्धि थी, क्या कहना चाहते हैं? यानी उत्कृष्ट धारणा युक्त जो पुरुष गुरु के उपदेश से नाना प्रकार के ग्रंथों में से विस्तार से वो लिंग शब्द बीज वगैरह को ग्रहण करके नियम दिए मिस्सेन विना, यानी निश्चित रूप से उसका एक दूसरे में मिलावट नहीं करता है। जिस कोठे का उस कोठे में रखते हैं माल वैसा ही ये बुद्धि रूपी कोठे में वो अलग अलग ग्रंथों को वो यहाँ का वहाँ नहीं मिक्सअप करते। ये इस ग्रंथ की बात है कि उस ग्रंथ की, ऐसा नहीं होता है। जो जिसका है उसी को वैसा ही समझते हैं। तो कहते हैं मिस्से ने विना धरे भी मदि कोठे, मति ज्ञान रूपी कोठो में उसको धारण करते हैं। जो कोई ऐसा धारण करता है तस्स बुद्धि, उसकी बुद्धि निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट है, ने बताइए कौन सी? कोष्ठ बुद्धि। अब और भी कुछ लिखा है तत्वार्थ राजवार्तिक में, कोष्ठागारिक स्थापितानाम असंकीर्णानाम अविनाष्टानाम भूयसाम धान्य बीजानाम यथा कोष्ठे अवस्थानम तथा, क्या कहते हैं? जैसे कोठों में धान्य बीज रखते हैं वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं करते, वैसे ही परोपदेशात अनवधारितानाम अर्थ ग्रंथ बीजानाम भूय साम्य व्यति किरणानाम कोष्ठ बुद्धि, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वैसे ही कोठे धन्य सुनिग्गल सुतत्था कोठ बुद्धिया प्रवचन सारोद्धार। ये अलग अलग ग्रंथों के उन्होंने यहाँ उसके रेफरेंसेस नीचे लिखे हैं। ये देखो कोष्ठ बुद्धि धारक यहाँ तो मुनिराजों की बात है, फिर भी असंख्यात वर्षों की, वो तो कोटि पूर्व की हो सकती है ना, असंख्यात वर्ष की कैसे आ गई? 8 साल पहले तो नहीं थे, क्योंकि वो तो मुनिराज होते जिनके कोष्ठ बुद्धि होती है, हम कहेंगे द्वादश अंक के धारी है जो ऐसे है। तो कहते कि यहाँ असंख्यात वर्ष तो धारणा की अपेक्षा लिए, यानी वही ना देव में चले जाएंगे तभी ले सकते ना। कोष्ठ बुद्धि वाले अगर देव में जाते हैं तो उनकी अपेक्षा से कहेंगे असंख्यात वर्ष की धारणा। शंका, यह किस कारण से होता है? धारणा रहती है क्यों कारण? तो कहते धारणा वर्णीय कर्म के तीव्र क्षोभ से होता है, यानी धारणा के आवरणीय कर्म का क्षोभशम है, यानी उतना उनके विघाड़ है, उघाड़ है, तीव्र उघाड़ है, धारणा संबंधी ज्ञान का तीव्र उघाड़ है। उक्त बुद्धि के धारकों की भी कोष्ठ बुद्धि संज्ञा है, क्योंकि यानी वो कोष्ठ बुद्धि अलग है, उनके धारक जीव को भी कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। गुण और गुणी में सर्वत्र भेद नहीं है। जिन शब्द की आगे सर्वत्र प्रवाह रूप से अनुवृत्ति कर लेना चाहिए, अनुवृत्ति कर लेना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ नमो कोठ बुद्धि ने भी इतना ही कहा है, पर नमो कोठ बुद्धि जिनानम ऐसा सब जगह समझना चाहिए, जिन शब्द सब जगह लगाना है, क्योंकि उसके बिना सूत्रों का अर्थ नहीं बनता। शंका, यदि जिन शब्द की अनुवृत्ति होती है तो फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और अनंतानवधि कृति कर्म प्ररूपक सूत्रों में जिन शब्द का उच्चारण किस लिए किया जाता है? ये कृति कर्म ने करने रोग जो का कार्य है उसमें ये नमस्कार करते हैं, तो नमो ओहि जनानम क्यों कहा? खाली नमो ओहिनम कहना था, अनुवृत्ति लेनी है जिन शब्द की तो वहां पर भी लेते हैं, ये इनका शंका है इनकी। नहीं, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति को दिखलाने के लिए वहां जिन शब्द का उच्चारण किया जाता है, इसलिए कोष्ठ बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो यह सिद्ध हुआ। शंका, धारणा मति ज्ञानी जिनों को नमस्कार क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं क्योंकि समस्त धारणा ज्ञान के विकल्पों का, यानी ज्ञान धारणा ज्ञान के जो समस्त विकल्प हैं उनका अवगाहन करने वाली कोष्ठ बुद्धि को नमस्कार करने पर सब धारणा ज्ञानियों को नमस्कार सिद्ध है। आगे की शंका, मति ज्ञान से अवधि और केवल ज्ञान के विषय की विशेषता का ज्ञान होने से तथा उनकी उत्पत्ति का कारण होने से पहले ही मति ज्ञानियों को नमस्कार क्यों नहीं करते? जैसे पहले देशावधि को, बाद में परमावधि को, बाद में सर्वावधि को किया, वैसे यहाँ पर उसके भी पहले मति ज्ञानियों को करना था, ये कहना है। समाधान, नहीं क्योंकि गौतम स्थविर का यहाँ ऐसा भाव नहीं है। शंका, उनका ऐसा भाव नहीं है किस प्रमाण से जाना जाता है? स्थविर, गौतम स्थविर, गौतम गणधर मुनिराज। तो कहते समाधान, मति ज्ञानियों का पहले कृतिकर्म नहीं करने से, कृतिकर्म ने नमस्कार, देखो कृति आपने पूछा ना कृति का अर्थ क्या है, कृतिकर्म यानी साधु की आवश्यक दैनिक क्रियाएं, उसको यहाँ कृतिकर्म कहा है। तो कि मति ज्ञानियों को पहले कृतिकर्म नहीं किया, कृतिकर्म ने क्या, वो नमस्कार वगैरह जो क्रियाएं हैं मुनियों की, जैसे हमने नमोजी नानम करके उन्होंने शुरुआत की है, तो वैसे उसको पहले कृतिकर्म नहीं करने से उनके उक्त भाव का अभाव जाना जाता है। मति ज्ञान परोक्ष है किंतु अवधि और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। मति ज्ञान इंद्रिय जन्य है और अवधि व केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है। इस प्रकार से मति ज्ञान से अवधि और केवल ज्ञान के महात्म्य की अपेक्षा करके उनकी पहले पूजा की है। शंका, गौतम स्थविर का ऐसा अभिप्राय रहा है यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उनका प्रमाण, उनका अभिप्राय आप कैसे जानते हो, ये पूछने का सवाल क्या है, नहीं उसके पूछने के पीछे का उनका मतलब क्या है? समाधान, उक्त अभिप्राय के अविनाभावी वचन रूप कार्य से वह जाना जाता है। उन्होंने उनको पहले नमस्कार नहीं किया, उसी से उनका अभिप्राय समझ में आ सकता है। फिर शंका, बीज बुद्धि आदि के धारकों की पहले पूजा क्यों नहीं की? पहले कोष्ठ बुद्धि वाले को क्यों लिया? बीज बुद्धि भी होते हैं, अन्य भी होते हैं। समाधान, नहीं की, क्योंकि बीज बुद्धि आदि की अपेक्षा धारणा का गुण गौरव अधिक पाया जाता है। कारण कि धारणा के बिना बीज बुद्धि आदिकों की विफलता देखी जाती है। अब कहते हैं नमो बीज बुद्धिनम, बीज बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। यहाँ जिनों को इस पद की अनुवृत्ति होती है, इस कारण बीज बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, इस प्रकार इतना सूत्र है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। बीज के समान बीज कहा जाता है, बीज के समान जो होता है वह बीज कहा जाता है। जिस प्रकार बीज मूल अंकुर, पत्र, पोर, स्कंध, प्रसव, तुष, कुसुम, क्षीर और तंदुल आदिकों का आधार है, उस प्रकार 12 अंगों के अर्थ का आधारभूत जो पद है वह बीज तुल्य होने से बीज है, जिसको बीज पद भी कहते हैं ना। बीज पद विषयक मति ज्ञान भी कार्य में कारण के उपचार से बीज है। संख्यात शब्दों द्वारा अनंत अर्थों से संबद्ध अनंत लिंगों के साथ बीज पद की जानने वाली बीज बुद्धि है, यह तात्पर्य है। यानी वैसे तो ये है ना, वह तो केवल ओमकार में तो ध्वनि है और उससे इतना सब अर्थ भाषित होता है, तो बीज बुद्धि धारकों के बिना उन्हें ये जो होती है सारी मति ज्ञान की, एक केवल ज्ञान रिद्धि छोड़कर बाकी सब रिद्धियां होती है गणधरों के, तभी तो ज्ञान में वो सारी बातें पकड़ में आती हैं। शंका, ये दो आंकड़ा कहाँ लिखा है फुटनोट का? यही यहीं पर है। हाँ, बीज बुद्धित्ति भणिदम होदी, वही जो अभी हमने देखा था ना कि अनंत संख्या शब्दों द्वारा, ये तात्पर्य है। इसी को एक फुटनोट नंबर एक है, वो पढ़ेंगे नीचे। नो इंद्रिय सुदनाना वर्णनानम वीर अंतरायाये तिविहाणम पगदीनम उपकस्स खव सम विशुद्धपसम। यानी नो इंद्रियावरण क्षुत ज्ञानावरण वीर्यांतराय, इनका उत्कृष्ट क्षोषम पाया जाता है। यानी नो इंद्रियावरण श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, तीन प्रकृतियों का उत्कृष्ट क्षोषम पाया जाता है। संखेज सर्ववाणम सद्दाणम तथ्य लिंग संयुक्तम एकम चिय बीजपदम लद्धुन परोपदेशेनम तम्मी पदे आधारे शैल सुदम चिंतीऊण गणेदी। यानी वो तो कुछ शब्दों के संख्या शब्दों के द्वारा सकल श्रुत को अवधारण करते जान लेते हैं। कस्सवी महेशिनो जा बुद्धि सा बीज बुद्धित्ति, ऐसे किसी महर्षियों की जो बुद्धि होती है उसको कहते बीज बुद्धि। हाँ, ऊपर बढ़ते फिर। शंका, बीज बुद्धि अनंत अर्थों से संबद्ध अनंत लिंग रूप बीज पद को नहीं जानती क्योंकि वह क्षाउक्षमिक है। समाधान, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार क्षाउक्षमिक परोक्ष श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान से विषय किए गए अनंत अर्थों का परोक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, ये परोक्ष श्रुत ज्ञान के द्वारा अनंत अर्थों को हम परोक्ष रूप से जानते हैं। जैसे हमने पूछा आपको जीव कितने हैं, अनंत है, और पुद्गल उससे भी अनंत अनंत, वो कितने वो सब हम गुरु पर्ग धारा में बताते। और फिर लो धर्म के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेश ही धर्म द्रव्य, असंख्यात प्रदेश ही अधर्म द्रव्य, वो ये जो सारी बातें हैं वो श्रुत ज्ञानियों ने परोक्ष रूप से जानी है, यही कह रहे हैं आप। उसी प्रकार मति ज्ञान के द्वारा भी सामान्य रूप से अनंत अर्थों को ग्रहण किया जाता है क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे परोक्ष श्रुत ज्ञान में हमने वो सब आगम से जाना है, वैसे मति ज्ञान में भी धारण कर सकता है। मति ज्ञान का भेद है वो, परंतु उसमें श्रुत ज्ञान और नौ इंद्रिय का वीर्यांतराय का भी क्षोभम उसमें ले लिया साथ में। शंका, यदि श्रुत ज्ञान का विषय अनंत संख्या है तो 14 पूर्वी का विषय उत्कृष्ट संख्यात है, ऐसा जो परिक्रम में कहा है वह कैसे घटित होगा? यह कोई दोष नहीं क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात को ही जानता है, ऐसा यहाँ नियम नहीं है। शंकाकार पूछते हैं, श्रुत ज्ञान समस्त पदार्थों को नहीं जानता है क्योंकि वह स्वयं उसके श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने दलील के लिए प्रस्तुत कर रहा है। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो दु अणभिलप्पाणम पन्नव निज्जाणम पुनः अनंत भागो सुधनिबंधो निबद्धो। कहते के उसका अर्थ देखते 17वें के वचन के अगोचर ऐसे जीवादिक पदार्थों के अनंत वे भाग प्रज्ञापनीय अर्थात तीर्थंकर की सातिशय दिव्य ध्वनि में प्रतिपाद्य होते हैं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ऐसा है केवल ज्ञानी जितना जानते उसका अनंत वा भाग उनकी वाणी में आता है, उनके वाणी में आता है उसका अनंत वा भाग गणधर ग्रहण करते हैं। उसी को यहाँ पूछ बता रहे। तथा प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंत वे भाग प्रमाण द्वादशांग श्रुत में निबद्ध किए जाते हैं, ये उसकी दलील है। इस प्रकार का वचन है ये शंकाकार ने प्रस्तुत किया। उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं, समस्त पदार्थों का अनंतवा भाग द्रव्य श्रुत ज्ञान का विषय भले ही हो, किंतु भाव श्रुत ज्ञान के विषय तो समस्त पदार्थ है, क्योंकि ऐसा माने बिना तीर्थंकरों के वचन अतिशय में अर्थ के अभाव का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं, ये द्रव्य श्रुत का विषय भले लिमिटेड हो, समस्त पदार्थों का अनंत वा भाग हो, परंतु भाव श्रुत ज्ञान का विषय तो सभी पदार्थ है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो तीर्थंकरों की वचन की अतिशयता तो क्या हो जाएगी, तो उसका अभाव हो जाएगा, उनके वचन की सार्थकता नहीं बनती। इसलिए बीज पदों का ज्ञान कराने वाली बीज बुद्धि है यह सिद्ध हुआ। बीज पदस्थित प्रदेश से अधस्तन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होकर पीछे उपरिम श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त होने वाली बीज बुद्धि है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर कोष्ठ बुद्धि आदि चार ज्ञानों की युगपत एक जीव में सर्वदा उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। हाँ, एक साथ हो सकते हैं। और अगर वो ऐसा मानेंगे कि बीज पदस्थित प्रदेश अधस्तन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण फिर ऊपर ज्ञान की उत्पत्ति में है, तो कहते वो घटित नहीं होता। वो कैसे नहीं घटित होता वो बताएंगे अभी। शंका वह कैसे, समाधान बीज बुद्धि सहित जीव में न तो अनुसारी बुद्धि संभव है और न प्रतिसारी बुद्धि संभव है। ये पदानुसारी वगैरह आते हैं ना, अनुसारी प्रतिसारी, ये पेज नंबर 60 पर आगे बताया है। इसी पुस्तक में देखो, पेज नंबर 60 पर देखो जरा, नीचे से पांचवी लाइन, पदानुसारी बुद्धि अनुसारी प्रतिसारी और तदुभय सारी से तीन प्रकार के होते भेद से, जो बीज पद से अधस्तन पदों को ही बीज पद स्थित लिंग से जानती है वह प्रतिसारी बुद्धि है, जो उपरिम पदों को ही जानती वह अनुसारी बुद्धि है, और दोनों पार्श्वस्थ पदों को नियम से अथवा बिना नियम के भी जो जानती वो उभय सारी बुद्धि है, वो वहां बताई है। और यहाँ जो बातें कह रहे हैं, यहाँ क्या बताया, उन्होंने पहले अधस्तन को जानते हैं फिर उसके बाद उपरिम को जानते हैं, ऐसा कोई कहते हैं, परंतु वो घटित नहीं होता, क्योंकि बीज बुद्धि सहित जीव में अनुसारी बुद्धि भी नहीं होगी और प्रतिसारी बुद्धि भी नहीं होगी, ये उनका कहना है। क्योंकि उभय यानी अधस्तन व उपरिम दिशा विषयक श्रुत ज्ञान के उत्पन्न करने में समर्थ ऐसी बीज बुद्धि को प्राप्त जीव में बीज बुद्धि के विरुद्ध अनुसारी और प्रतिसारी बुद्धियों के अवस्थान का विरोध है। कोई कहेंगे उभय सारी बुद्धि होती, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वह अधस्तन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं होती है। ऐसे नियम में प्रतिबद्ध बीज बुद्धि युक्त जीव में अनियम से उभय दिशा विषयक श्रुत ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वभाव वाली उभय सारी बुद्धि के अवस्थान का विरोध है। और एक जीव में सर्वदा चार बुद्धियों की एक साथ उत्पत्ति हो ही नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि सभी एक साथ भी प्रकट हो सकती है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यानी अनेक रिद्धियां एक साथ होती है, वो बात बताना चाहते हैं। ऊपर जो 18 नंबर है ना, उसकी बात करेंगे। बुद्धि तवो वियलत्थी विऊवण लत्थी तहे वो सहिया रसबल अखीणा विय लद्धी ओ सत्तपन्नता। यानी सात रिद्धियों के यहाँ नाम बता रहे हैं। बुद्धि तप यानी वो हर एक के साथ रिद्धि लगाना, यानी बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, इस प्रकार रिद्धियां सात कही गई है। यहाँ पर उक्त गाथा के व्याख्यान में गणधर देवों के चार निर्मल बुद्धियां देखी जाती हैं। एक साथ है ना उनके तो चार, यही जो अभी कुष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी, अभिन्न श्रोतृत्व, हाँ ये बुद्धि रिद्धियां हैं, निर्मल बुद्धियां कहा ना। दूसरी बात यह है कि गणधर देवों के चारों बुद्धियां होती है, क्योंकि उनके बिना 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। शंकाकार पूछते हैं, 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग कैसे आ सकता है? उसका समाधान, गणधर देवों में कोष्ठ बुद्धि का अभाव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अवस्थान के बिना उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान के विनाश का प्रसंग आता है। कोष्ठ बुद्धि ने जिस जो ग्रंथ का या जिस अनुयोग का जो विषय उसी में रखना, मिश्रण नहीं करना, अगर वो अभाव होगा तो वो तो श्रुत ज्ञान ठीक होगा नहीं, उसका विनाश हो जाएगा। दूसरी बात, बीज बुद्धि का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना गणधर देवों को तीर्थंकर के मुख से निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप बहुत लिंग अलिंगिक बीज पदों का ज्ञान न होने से द्वादशांग के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि ओंकार ध्वनि में वो तो के अनक्षरात्मक है, वहाँ से निकली फिर अक्षरात्मक भी हो जाती है, परंतु उसमें कितने केवल ध्वनि के द्वारा वो बीज पद कहेंगे, उसके द्वारा उनको वो अर्थ भाषित हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो केवल वो सुनने से उनको अर्थ भाषित नहीं होता, तो फिर द्वादशांग की रचना भी नहीं होती। बीज पदों के स्वरूप का जानना बीज बुद्धि है, उससे द्वादशांग की उत्पत्ति होती है, और उस बीज बुद्धि के बिना द्वादशांग की उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग आता है। यानी बीज बुद्धि से वो समझते हैं, वो दिव्य ध्वनि का अर्थ समझते हैं, तभी तो द्वादशांग की रचना करते हैं। उनमें पदानुसारी नामक ज्ञान का अभाव नहीं है, पदानुसारी बुद्धि जिसको कहते हैं, क्योंकि बीज बुद्धि से जाना है स्वरूप जिनका, तथा कोष्ठ बुद्धि से प्राप्त किया है अवस्थान जिन्होंने, ऐसे बीज पदों से यहाँ और अवाय के बिना बीज पद की उभय दिशा विषयक श्रुत ज्ञान तथा अक्षर पद वाक्य और उनके अर्थ विषयक श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति बन नहीं सकती। उनमें संभिन्न श्रोतृत्व का अभाव नहीं है, क्योंकि उसके बिना अक्षर और अनक्षरात्मक 700 कुभाषा और 18 भाषा स्वरूप नाना भेदों से भिन्न बीज पद रूप वो प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न भाव प्राप्त होने वाली, वो लघु भाषा भी कहते हैं ना, उसको कुभाषा कहा, और महाभाषा जो 18 भाषा जो है मुख्य भाषा, प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न भाव प्राप्त होने वाली ऐसी द्रव्य है। देखो प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न भाव को प्राप्त होने वाली दिव्य ध्वनि कहा उसको, ग्रहण न होने से द्वादशांग की उत्पत्ति के अभाव का प्रसंग आता है। यदि उनके ये सभी बुद्धियां नहीं होती तो द्वादशांग की उत्पत्ति कैसे होती? कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि। संभिन्न श्रोतृत्व ने वो अनेक प्रकार की इतनी भाषाओं का होते हुए भी उसमें कोई जुदा जुदा स्पष्ट जानते हैं, कोई मिलावट नहीं होती। हमारा क्या होता है, चार लोग आपस में एक ही भाषा में बोलेंगे तो भी हमारा कन्फ्यूजन होता है। अब इमेजिन करो, कोई हिंदी में यहाँ बात कर रहा है, कोई कन्नड़ में कर रहा है, कोई जापानीज बोल रहा है, तो हमारी क्या पोजीशन होगी? अरे जापानी कन्नड़ तो जाने ही नहीं, जो हम जानते उसकी पर हम उपयोग होगा। उनके तो सभी ज्ञान में आती है, फिर भी उसमें मिलावट नहीं होती, भिन्न भिन्न वो जानते हैं, नियम से होते। गणधरों के तो होते ही है एक, हाँ उनके नहीं होता एक, किसी को हो सकता है ना। गणधरों की बात है, द्वादशांग की ये नहीं, सर्वदा पहले बात आई थी ना कि सर्वदा चार बुद्धियों की एक साथ उत्पन्न हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है, ऐसे सर्वदा नियम नहीं। 58 पेज पर है, पहले पैराग्राफ की लास्ट में, कि एक जीव में सर्वदा यानी हमेशा ही चार बुद्धियों की एक साथ उत्पत्ति हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। यानी उसमें से एक हो भी सकते ना, किसी को कोष्ठ बुद्धि है, ऐसा हो सकता है। परंतु जो द्वादशांग की रचना करते हैं या द्वादशांग का जिनके ज्ञान है, जो श्रुति केवली है, उनके तो ये होगी सभी। इस कारण ये दूसरा पैराग्राफ 59 पेज पर, बीज पदों के स्वरूप का जानना बीज बुद्धि ऐसा सिद्ध हुआ। उस बुद्धि से भिन्न न होने के कारण जीव भी बीज बुद्धि, यानी जीव को भी बीज बुद्धि कहते हैं। उन बीज बुद्धि के धारक जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। उस पर शंका पूछते हैं, बीज बुद्धि किस कारण से होती है? कहते हैं कि वह विशिष्ट अवग्रहावरणीय के शोषण से होती है। एक कोष्ठ बुद्धि और उसकी बात की थी तो उसमें धारणावरणीय लिया था, है ना? अभी किसमें लिया था धारणावरणीय? कोष्ठ बुद्धि के लिए कहा, कोष्ठ बुद्धि के लिए कहा था धारणावरणीय। और इसमें बीज बुद्धि में देखो, कोष्ठ बुद्धि में क्या कहा, जो हमने गुरुओं से पढ़ा है उसको वो बराबर जिसका उसमें रखता है, मिलावट नहीं करता। और बीज बुद्धि में तो क्या है, बीज पदों से उसको ज्ञान हो जाता है, यानी वो अवग्रह ना फर्स्ट, हाँ सबका, वो तो उसके द्वारा वो जान लेते हैं, वो अवग्रह में आ जाता है। हाँ, ये बीज बुद्धि अवग्रहवर्णीय के शोषण से होती है और कोष्ठ बुद्धि धारणावरणीय के शोषण से होती है। अभी यहाँ रुकेंगे हम, क्योंकि आगे पदानुसारी की बात होगी, वो कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नहीं सदा देत हो। मैं